प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की गतिविधियां भी होंगी और आर्थिक जगत के उतार चढ़ाव पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन व्यक्तित्वों को भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और परिक्रमा के आज के इस अंक में हम डेटलाइन कार्यक्रम में बात करेंगे एनसीईआरटी की, जो बुक्स को लेकर पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में चल रहा है कि किताबें मार्केट में कम आई हैं, किस तरह से लें और एनसीईआरटी ने क्या कहा है, सब कुछ बातें होंगी इस कार्यक्रम में। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो जागृति, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय and with me today is my co-host Jagriti Sharma, and for you we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. At least 7 people killed and over 700 injured as powerful earthquake hits Taiwan. Tsunami warnings issued in the region.
विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया।
इलेक्शन कमीशन इज मीटिंग विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टुडे टू रिव्यू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन व्यू ऑफ लोकसभा इलेक्शंस।
केंद्रीय मंत्री डॉ एल मुर्गुन सहित राज्यसभा के 11 नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली।
एंड इन आईपीएल, दिल्ली कैपिटल्स टू फेस कोलकाता नाइट राइडर्स at the YS Rajasekhara Reddy Cricket Stadium in Visakhapatnam this evening. And now Jagriti, it's time for a segment Dateline India in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about NCERT textbooks. Well, exams are over and students are excited about the new course and been promoted to a new class. And in the world of education, school books are the silent mentors, guiding students through the vast landscape of knowledge. They're not merely a collection of words on paper, but gateways to understanding, empathy, and like I said, understanding Jagriti. And let's talk about why school books are of such great importance. Well, I'd like to quote Nelson Mandela here, who said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." And Jagriti, school books provide the ammunition for this powerful weapon. Then the school books ignites the flame of curiosity and equips students with the tools to navigate the complexities of the world. Then, of course, school books are the repositories of cultural heritage, preserving the collective wisdom of civilizations past and present. Then school books are instrument in fostering literacy. And lastly, Jagriti, books build the foundation of lifelong learning.
बिल्कुल, किताबों की दुनिया के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। और अभी हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस समय किताबों को लेकर बड़ी कश्मकश जैसी स्थिति चल रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कहा भी है कि विद्यालयों की जो पुस्तकें हैं समय पर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि पेरेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके पास जो है एनसीईआरटी की किताबें नहीं हैं और परचेज जहां पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी उनकी नहीं हो पा रही है। जबकि एनसीईआरटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली, दूसरी, सातवीं, आठवीं, दसवीं और जो बारहवीं की कक्षाएं हैं, जो 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनकी 33 लाख बुक्स जो है प्रिंट हो चुकी हैं और उन्हें दुकानों के पास भेज दिया गया है।
Yes, and to add to what you have just said, Jagriti, in a recent announcement, the Central Board of Secondary Education, CBSE, has communicated that the National Council of Educational Research and Training, NCERT, will be introducing new syllabi and textbooks for classes 3 and 6 for the academic year 2024-25, starting April 1st. The rest of the classes will continue with the existing curriculum and textbooks. And NCERT has said that it is making every effort to provide school books on time. In a social media post, it said about 33 lakh books of classes 1, 2, 7, 8, 10 and 12 have been printed and delivered to bookshops, and NCERT said that the new syllabus books for classes 3 and 6 will be published this month and in May.
जी हाँ, तीसरी और छठी कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं वो इस महीने और अगले महीने जो है प्रकाशित कर दी जाएंगी. और एनसीईआरटी ने यह भी कहा है कि चौथी, पांचवी, नौवीं और ग्यारहवीं की जो किताबें हैं वो इस महीने से बाजार में आ जाएंगी. और उन्होंने सभी छात्रों और अभिभावकों से अपील भी की है कि वो धैर्य रखें और चिंतित ना हों, क्योंकि बहुत से राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो है किताबों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो सिलेबस जब चेंज होता है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर दोबारा से प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के बाद एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है. तो कहीं ना कहीं इधर स्टूडेंट्स के मन में भी चिंता होना लाजमी है, क्योंकि उनका सेशन शुरू हो चुका है और किताबें अवेलेबल नहीं हो रही हैं.
Absolutely, and the response of NCERT Jagriti has come amid reports of non-availability of school books in many states, like you have been saying. So, from our discussions, we find that the NCERT has requested all students and parents to be patient and not to get worried. The books will soon be available in time. So, don't panic, as these books will be available in the market soon, and most probably by next month, as told by NCERT. Till then, believe in sharing is caring. Books are indeed the compass guiding us through the vast ocean of knowledge.
बिल्कुल. और एनसीईआरटी के चीफ बिजनेस मैनेजर विपिन दीवान का कहना है कि किताबों का एक बड़ा लॉट पहले बाजार में पहुंच चुका है, हालांकि किताबों की अभी कुछ कमी है. और उनका ये भी कहना है कि जो उनका सर्वर है उसमें जो तकनीकी दिक्कतें हुई हैं उनकी वजह से ये देरी हुई है. डिमांड के हिसाब से सप्लाई कुछ कम है, हालांकि जल्द ही सभी क्लासेस की जो किताबें हैं वो बाजार में होंगी और पेरेंट्स तक भी वो पहुंच जाएंगी.
सो बी पेशेंट, द बुक्स विल सून बी अवेलेबल.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है आज हमारे लिए.
Yes, and in a pivotal meeting chaired by Dr. Anusha Lama, the National Health Mission in Sikkim addressed crucial reproductive health issues, proposing initiatives to enhance awareness and accessibility to services. More from a correspondent from Sikkim.
A significant meeting took place under the Preconception and Pre-Diagnostic Techniques Act 1994, chaired by Dr. Anusha Lama, the Mission Director of the National Health Commission, NHM Sikkim, on 2nd April at the Conference Hall of the Health Secretariat. Dr. Anusha Lama led the State Advisory Committee meeting addressing crucial aspects of reproductive health, joined by Dr. Anita Putia, Director of Reproductive Child Health, and Dr. Manisha Rai, Joint Director of RCH. The committee discussed amendments to the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 and its connections with the PNDT. Dr. Manisha Rai highlighted the importance of distinguishing between the two acts, emphasizing their unique roles in addressing reproductive health issues. She underscored the need for clarity to prevent challenges in implementation and enforcement. Dr. Anusha Lama stressed the significance of raising awareness about adolescents' health, including access to safe abortion services. She proposed a brainstorming session to develop strategies for stricter regulations on abortion-related products and educational campaigns to combat misuse. Moreover, she advocated for changing attitudes towards abortion and adolescent reproductive health through training programs and advocacy efforts. Looking ahead, Dr. Lama proposed initiatives such as a confidential helpline for women seeking information on abortion services and utilizing social media for awareness campaigns. These initiatives aim to strengthen awareness and accessibility to reproductive health services while addressing challenges such as the inappropriate sale of abortion-related drugs and changing attitudes among healthcare providers and the public. This is Tashang Mubutia for Akashwani News from Gangtok.
और अब हम चलते हैं उस स्थान की ओर जहां पर हमें मिलती है गंगा की गोद और हिमालय की छाया, यानी कि देवस्थान उत्तराखंड. उत्तराखंड आर्थिकी जो है वो पर्यटन की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उत्तराखंड की जो हिमालय की वादियां हैं या फिर वहां पर जो हरितिमा है, जो वहां की हरियाली है, लोगों को बहुत लुभाती है. और बात करें अगर इसके अलावा आपके आध्यात्मिक पर्यटन की, तो वहां पर चार धाम यात्रा है। हरिद्वार में गंगा की गोद लोगों को मिलती है, गंगा स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान और अनेक पर्यटन स्थल भी वहां पर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। उत्तरकाशी जिले में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के जो गेट हैं वो ग्रीष्मकाल के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजीव सुंदरियाल।
हरिद्वार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इज गेयरिंग अप फॉर अ हाई स्टेक्स इलेक्टोरल शो।
उत्तरकाशी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पर्यटक अब गड़तांग गली, नेलांग और गोमुख तपोवन की सैर कर सकेंगे। हालांकि गंगोत्री और गोमुख के बीच कई स्थानों पर हिमखंड के कारण ट्रैक अवरुद्ध है। हिमखंड की बर्फ हटाने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। ऐसे में केवल पर्वतारोही पर्यटकों को ही गोमुख तपोवन जाने की अनुमति दी जा रही है। आम पर्यटकों को भी जल्दी ही ट्रैकिंग के लिए अनुमति दी जाएगी। ये उद्यान शंकुधारी वृक्षों के वन और खूबसूरत ग्लेशियर्स के लिए प्रसिद्ध है। गंगोत्री ग्लेशियर के मुख पर स्थित गोमुख, जो गंगा नदी का मुख्य स्रोत है, वह भी इसी उद्यान में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क विशेषकर हिम तेंदुओं के लिए पहचाना जाता है। इस पार्क में भूरा भालू, काला भालू, भरल, अग्राली भेड़, लाल लोमड़ी सहित कई वन्य जीव पाए जाते हैं। दुनिया भर के पर्वतारोही हर साल गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित विश्व प्रसिद्ध चोटियों के आरोहण के लिए उत्तरकाशी आते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में नेलांग घाटी भी मौजूद है, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि 2015 में इसे नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
अभी आप सुन रहे थे साक्षी सिंह की रिपोर्ट।
एंड मूविंग ऑन, इन व्यू ऑफ द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस, वी प्रेजेंट यू अ कैप्सूल बेस्ड ऑन स्टेट प्रोफाइल, गिविंग डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, डेट ऑफ पोलिंग, नंबर ऑफ सीट्स एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स बाय अ कॉरेस्पॉन्डेंट। फर्स्ट लेट्स गो ओवर टू उत्तराखंड हरिद्वार कंस्टिट्यूएंसी। And in Uttarakhand, elections will be held on all 5 Lok Sabha seats in the first phase, where 83,37,914 voters of the state will decide the fate of the 55 candidates in the elections. And our correspondent reports that the Haridwar Lok Sabha seat emerges as a focal point of attention, with a record-breaking 14 candidates vying for victory. And the stage is set for a fierce electoral battle as contenders vie for the trust and support of the electorate. We have more from a correspondent.
The Haridwar parliamentary constituency is gearing up for a high-stakes electoral showdown with a record-breaking 14 candidates throwing their hats into the ring. Among the key contenders are Trivinder Singh Rawat from Bharatiya Janata Party, Virinder Rawat from Congress and Jamil Ahmed from Bahujan Samaj Party. 7 independent candidates, including MLA Umesh Kumar from Haridwar's Khanpur Assembly seat, have made the election more interesting by staking claim on this seat. A total of 21 candidates filed nomination from Haridwar parliamentary constituency, out of which 7 nominations were found incomplete and subsequently rejected. It may be recalled that there are 14 assembly constituencies in Haridwar Lok Sabha seat and 20,35,726 voters will decide the fate of the candidates in the election. To facilitate seamless voting, authorities have established 2,318 polling stations across the Haridwar seat, ensuring accessibility and convenience for voters on election day. In the last Lok Sabha election, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank of the BJP emerged victorious from this seat. Sanjeev Sundarial, Akashwani News, Dehradun.
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पहले चरण में मतदान होने हैं। चुनाव आयोग 19 अप्रैल को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रहा है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
The people of Cooch Behar parliamentary constituency will vote on 19th April under the first phase of election. There are more than 19 lakh voters in this constituency. While the number of voters above 85 years of age is more than 10,000, security forces are doing the route marches to build confidence among voters. Police and various other government agencies are seizing illegal cash, liquor, etc. Naka checkings are erected at many points. Election commission has already started training for vote workers and encouraging people so that more and more people come forward for voting on that day. Schools under the West Bengal Board of Secondary Education will remain closed between 16th April to 20th April for 5 days in the district of Kochbihar, Alipurduar and Jalpaiguri for the election in Phase 1. Different political parties have started campaigning and public meetings to woo the voters. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
In Gaya parliamentary constituency, polling will be held on the 19th of April in the first phase of Lok Sabha elections. After the end of withdrawal of candidature, 14 candidates are in the fray. Among these, 7 independents also trying the electoral fortune. Gaya is the land of enlightenment of Lord Buddha and the land of Dasarath Maji also. In the 18th Lok Sabha elections, the main electoral fight is expected between former Chief Minister Jitan Ram Maji of the Hindustani Awam Morcha and RJD's Kumar Sarabjit. We have more from our correspondent.
In the high-profile Gaya Lok Sabha constituency, more than 18 lakh voters will decide the electoral fate of 14 candidates. The seat is represented by JDU, but in a seat-sharing agreement in the NDA, Gaya Lok Sabha seat has been allocated to Hindustani Awam Morcha. In 2019, Vijay Manji was elected MP from here on JDU ticket. Jitan Ram Manji of Hindustani Awam Morcha is trying his electoral luck third time from this seat after losing twice in 2014 and 2019. RJD nominee Kumar Sarvajit is present MLA from Bodh Gaya and he was agriculture minister in the previous government. Susma Kumari from BSP is also in the fray. Several areas of this parliamentary constituency are Naxal affected. Voting will take place at Naxal affected polling booths of Sher Ghati, Bara Chatti and Bodh Gaya between 7 a.m. to 4 p.m. Despite being an international hotspot for pilgrims, lack of development, poverty, unemployment and problem of traffic jams in urban areas are major issues of Gaya Lok Sabha constituency. Dharmendra Kumar Rai, Akashvani News, Patna.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
3rd April is the birth anniversary of freedom fighter and social activist Kamala Devi Chattopadhyay, who was born on April the 3rd, 1903, in Mangaluru. Common at the time, she was married at the tender age of 14 and was widowed only 2 years later. Kamala later became friends with Sarojini Naidu's younger sister, Suhasini Chattopadhyay, who introduced Kamala to their older brother, Harindranath. The two bonded over a love for the arts and theatre and married in the face of much societal opposition. Kamala's father-in-law was a progressive thinker and encouraged her to continue her education.
In 1927, Kamala joined the Indian National Congress and threw herself amidst the freedom struggle. She joined the Seva Dal and then became an outspoken supporter of the Salt Satyagraha. She was a part of the 7-member lead team announced by Mahatma Gandhi in the Salt Satyagraha of 1930 to prepare salt at the Bombay beachfront.
When World War II broke out, Kamala Devi was in England and she immediately began a world tour to represent India's situation to other countries and gather international support for independence after the war. During the partition of 1947, Kamala Devi worked tirelessly in helping the migrants to establish new homes. She also helped set up health facilities for the people affected due to the traumatic partition of 1947.
Kamala Devi worked relentlessly for the upliftment of women. She pioneered the cooperative movement, which helped raise the socio-economic status of women in the country.
Kamala Devi was an art enthusiast and worked to propagate art and culture of India. She focused on reviving the handicrafts and textiles of India. Chattopadhyay also set up the National School of Drama and later headed the Sangeet Natak Academy. Chattopadhyay also wrote about 20 books, many of which were inspired by her personal experiences during visits to foreign countries.
She was honored for her groundbreaking work with the Padma Bhushan in 1955 and with the Padma Vibhushan in 1987. In 1966, she was also awarded the Ramon Magsaysay Award for Community Leadership. In 1974, she was awarded the titles of Ratna Sadasya by the Sangeet Natak Academy and Desi Kottamma by Shanti Niketan, the highest awards of both the organizations. On the 29th of October 1988, Kamala Devi Chattopadhyay breathed her last. AIR pays tribute to the noble soul.
We also remember Bhuta Singh, Chuhur Singh and Imam Ali, who were supposed in the Ludhiana Sikh Regiment of the British Indian Army. In 1857, they were posted in the Satluj Division. Influenced by the activities in Delhi and Meerut, these sepoys took active part in fighting against the British Army during the First War of Independence in 1857. However, they were captured by the British soldiers and charged with disloyalty and mutiny against the British rule. Bhuta Singh, Chuhur Singh and Imam Ali were tried and sentenced to death. They were hanged on the 3rd of April, 1858. We salute the brave sons of the soil.
In business news, today, the highly volatile session, benchmark equity indices ended on a flat note today. BSE Sensex declined 27 points, or 0.04%, to finish at 73,877. The NSE Nifty fell 19 points, or 0.8%, to settle at 22,435. In the forex market, the rupee ended marginally lower at 83 rupees and 43 paise against the US dollar today.
और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. मैच विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. कल लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हरा दिया. और अब समय है उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन. और सबसे पहले हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को. उनकी पुण्यतिथि पर किशोरी अमोनकर ने अपने शास्त्रीय संगीत के बल पर दशकों तक हिंदुस्तान के संगीत प्रेमियों के दिल में अपनी जगह बनाई. किशोर अमोनकर जयपुर अतरौली घराने की प्रमुख गायिका थी. उनकी मां भी सुप्रसिद्ध गायिका थीं जिनका नाम मोघूबाई कुर्दीकर था. उनकी संगीत प्रस्तुति प्रमुख रूप से पारंपरिक रागों जैसे जौनपुरी, पटबिहाग, अहीर पर होती थी. और इसके अलावा किशोरी अमोनकर ठुमरी, भजन और ख्याल भी गाती थीं. किशोरी अमोनकर 1952 से आकाशवाणी के लिए भी गाना शुरू किया था. उन्होंने किशोरी अमोनकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.
एडवर्ड रीगन मार्फी वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1961. ही इज एन अमेरिकन कॉमेडियन, एक्टर एंड सिंगर. मार्फीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉमेडी इंडस्ट्री हैव बीन रिकग्नाइज्ड with accolades such as the Golden Globe Award, a Grammy Award, and nominations for an Academy Award and BAFTA Award. He was honored in 2015 with the Cecil B. DeMille Award in 2023, solidifying his legacy. Murphy became a movie star in the 1980s films like Coming to America, Trading Places, and Beverly Hills Cop.
और आज प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार राधेश्याम खेमका की पुण्यतिथि है. राधेश्याम खेमका गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहे. 38 सालों तक उन्होंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण का संपादन किया. साहित्य और शिक्षा की सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया.
Marlon Brando was born on this day. He's an American actor, activist who left an indelible mark on the film industry. His influence is still felt today as he is widely regarded as one of the greatest and most influential actors of all time. Throughout his career, which spanned 6 decades, Brando received numerous accolades. His introduction of the Stanislavski system of acting and method acting to mainstream audiences revolutionized the craft, earning him a place in the annals of film history.
और जब भी भारतीय इतिहास में महान राजाओं की बात आती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर आता है. वीर योद्धा, कुशल शासक, सैन्य रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की वीरता के किस्से अनेक हैं. आज मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी राजे भोंसले की पुण्यतिथि है. शिवाजी ने अनेक किलों का निर्माण और पुनरुद्धार कराया था.
Sir William Wallace was born on this day. He was a Scottish knight who became a key leader during the First War of Scottish Independence. Along with Andrew Moray, Wallace defeated an English army at the Battle of the Stirling Bridge in September 1297. He was appointed Guardian of Scotland and served until his defeat at the Battle of Fell Creek in July 1298. And he is the subject of the Academy Award-winning film Braveheart.
आज भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जयंती है. उन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है. उनका पूरा नाम सैम हॉर्मूस जी फ्रेंजी जमशेद जी मानेकशॉ था. उनका जन्म आज ही के दिन 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था. देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 छात्रों में से वे एक थे.
Yes, and under his command, Indian forces conducted victorious campaigns against Pakistan in the Indo-Pakistani War of 1971, which led to the creation of Bangladesh in December 1971. And he was, of course, awarded the Padma Vibhushan and the Padma Bhushan, India's second and the third highest civilian awards. And Doris Day was born in this day in 1922. She was an American actress and singer. She began her career as a big band singer in 1939 and achieved commercial success. Let's listen in to a hit song of hers, Whatever Will Be, Will Be.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera.
आज हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा की जयंती है. निर्मल वर्मा का जन्म आज ही के दिन 1929 को शिमला में हुआ था. हिंदी के आधुनिक साहित्यकारों में से एक निर्मल वर्मा के जो चर्चित उपन्यास हैं उनमें से रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन हैं. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है. और आज ही हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध साहित्यकार मनु भंडारी की भी जयंती है. मनु भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अपनी कलम चलाई. मनु भंडारी ने पढ़े लिखे आधुनिकता पसंद लोगों की दुख भरी प्रेम गाथाएं लिखी और वो उपन्यास था एक इंच मुस्कान. उन्होंने ये उपन्यास राजेंद्र यादव के साथ लिखा.
प्रभु देवा वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1973. इज अ इंडियन डांस कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर हु हैज वर्क्ड प्रीडोमिनेंटली इन तमिल, हिंदी, तेलुगु एंड कन्नाडा लैंग्वेज फिल्म्स. इन अ करियर स्पैनिंग 32 ईयर्स ही हैज परफॉर्म्ड एंड डिजाइन डांसिंग स्टाइल्स and has garnered 2 National Film Awards Best Choreography. In 2019, he was awarded the Padma Shri for his contributions to dance. Let's listen in to one of his songs.
और आज प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और पार्श्व गायक हरिहरन अपना जन्मदिन मना रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका एक गाना.
Yes, and in 2004, the government of India honored him with the Padma Shri and is a 2-time National Award winner. Hariharan, associating with Leslie Lewis, formed Colonial Cousins, a 2-member band.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो जागृति शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए अनुमति. आप सुनते रहिए आकाशवाणी नमस्कार
नमस्कार।